समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो वैष्णवी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट वैष्णवी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास के मंत्र पर चल रही है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सटेंड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ 9 स्टेट्स ऑन द फॉर्मेशन डे टुडे।
आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ से 9 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इज ब्रॉडर इंडो पैसिफिक विजन।
लखनऊ को उसकी समृद्ध खान पान विरासत के सम्मान में यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया।
And India records its best ever performance at the 2025 Asian Youth Games in Bahrain with 48 medals surpassing the previous tallies of 2009 and 2013. And now it's time to for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Formation Day of several Indian states and union territories. Today we are bringing you a special program celebrating the heartbeat of a nation, India's unity and diversity. Yesterday, the nation proudly celebrated National Unity Day, paying homage to one of India's greatest architects, Sardar Vallabhbhai Patel. It was on this day in memory of the Iron Man of India that we reaffirm a pledge to keep a country united, strong and harmonious. Sardar Patel's contribution to India is monumental. After independence, when a land was divided into hundreds of princely states, it was his courage, diplomacy and leadership that brought them all together under one flag, one constitution, one identity, Bharat. And as destiny would have it, the very next day after we celebrate national unity, we come together again to celebrate the formation day of several Indian states and union territories, each one shining like a precious jewel in the crown of our motherland.
आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन क्षेत्रों के लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने इन राज्यों की प्रगति, संस्कृति और एकता की भावना की सराहना की, जो मिलकर भारत के सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं।
So let's take a cultural journey from the north to the south, from the coast to the heartland, exploring how each of the states adds to its own rhythm to India's symphony. We begin a journey in Andhra Pradesh, a land blessed with the heritage of dynasties like the Satavahanas and the Vijayanagaras, and a culture that thrives in art, music and devotion. The melodious strains of Kuchipudi dance and the sacred chants of Tirumala and the spicy flavors of coastal Andhra all make it a vibrant part of India's story. From Amravati's ancient stupas to Visakhapatnam's modern skyline, Andhra stands tall as a symbol of balance between tradition and technology.
अब हम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं अभिषेक, जिसे अक्सर भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान के खेतों के पार आदिवासी कला, नृत्य और लोक कथाओं का खजाना छिपा है। बस्तर में आदिवासी ढोल जंगल की धड़कनों के साथ ताल मिलाते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ भारत के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ये साबित करता है कि सांस्कृतिक गहराई और आर्थिक विकास एक साथ फल फूल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के एक आयोजन में कहा कि आज समग्र राष्ट्र विकास के साथ साथ अपनी विरासत के संरक्षण में लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्णय और नीति में ये मूल भावना प्रतिबिंबित है।
आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं।
Now let's head to north to Haryana, the cradle of history and valor. It was on the sacred soil of Kurukshetra that Lord Krishna delivered the eternal message of the Bhagavad Gita. And today Haryana carries forward the legacy through courage, sportsmanship and enterprise, be it the fields that feed the nation or the athletes who make India proud. Haryana embodies the spirit of action and determination. No wonder it's called the land of heroes.
और हरियाणा से हमारी यात्रा हमें 5 नदियों की धरती पंजाब ले आती है, जहां हर सूर्योदय भक्ति से शुरू होता है और हर दिल खुशी से धड़कता है। पवित्र स्वर्ण मंदिर से लेकर भांगड़ा की जीवन धुनों तक पंजाब जीवन का उत्सव है। इसकी धरती ने हमें स्वतंत्रता सेनानी, किसान, कवि और सैनिक दिए हैं। जैसे ही सरसों के खेतों की खुशबू हवा में घुलती है, भारत की आत्मा की धड़कन महसूस की जा सकती है।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच।
Yes, now let's travel down south to Kerala, truly God's own country. From the tranquil backwaters of Alappi to the lush hills of Wayanad, Kerala's beauty is matched only by its literacy, awareness and social harmony. Festivals like Onam bring together people of all faiths and communities, and the traditional art forms Kathakali, Mohiniyattam and Theyam carry centuries of storytelling and devotion. And Kerala reminds us that education and culture together can build a peaceful and progressive society.
முத்தோளம் முகிலோளம் மலையாளம் பாடும் நிம் தீரத்து பூப்பொறி பாட்டீளம் மயிலாஞ்சி பாட்டின் தழுகுடு கூட்டு கூடும் நேரம் நல்லோளம் நம்ம கோணம்
தூரம்
और अभिषेक, जैसा आपने अभी केरल के बारे में बता रहे थे, तो केरल राज्य की सीमाओं के ठीक पार स्थित है शानदार कर्नाटक राज्य, एक ऐसी धरती जहां इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। मैसूर की शाही शान से लेकर बेंगलुरु के नवाचार तक कर्नाटक ने भारत को कर्नाटक संगीत की समृद्ध विरासत, यक्षगान की कला और देश की तकनीक को शक्ति प्रदान करने वाले वैज्ञानिक दिए हैं।
Yes, Vaishnavi, and now if we sail westward, we reach the turquoise archipelago of Lakshadweep. This chain of islands sparkles like emeralds in the Arabian Sea, each one home to unique traditions and a deep connection with nature. And the people of Lakshadweep live in harmony with the ocean, drawing their livelihood and joy from it. Their folk dances, especially the lava dance and the songs of the sea, capture the rhythm of life untouched by the rush of the mainland.
और फिर से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम खुद को पुदुचेरी में पाते हैं, एक ऐसा शहर जहां भारत का मिलन फ्रांस से होता है और आध्यात्मिकता का समुद्र से। बोगनविलिया से लदी शांत सड़कें, कॉफी की खुशबू और श्री अरबिंदो आश्रम का शांतिपूर्ण वातावरण पुदुचेरी को एक बेजोड़ जगह बनाता है। पुदुचेरी एक खूबसूरत याद दिलाता है कि सम्मान और प्रेम के साथ जीने पर विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
Yes, and at the very heart of India lies Madhya Pradesh, often called the heart of incredible India, with ancient caves, majestic forts, and bustling wildlife sanctuaries. It is a state that bridges the past and present. Khajuraho sculpted temples speak of divine artistry, while the tribal art of Gond and Bhil communities keep indigenous traditions alive. From Sanchi's serenity to Bhopal's lakes, Madhya Pradesh beats with the pulse of India's cultural heart.
हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक अनूठी कहानी बताते हैं, लेकिन साथ मिलकर ये भारत की भव्य कहानी बताते हैं। ये कहानी है भूगोल, भाषा और जीवन शैली में विविधता की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के डिजिटल गलियारों तक, पंजाब के खेतों से लेकर केरल के तटों तक, भारत एक परिवार की तरह एक साथ आगे बढ़ता है।
Yes, and Sardar Vallabh Bhai Patel once said, take to the path of dharma, the path of truth and justice, and do not turn back whatever happens. Today, as we celebrate these formation days, we honor that path of walking forward with unity, equality and pride. So, dear listeners, as we salute the spirit of these proud states and union territories, let's remember, our diversity is not a challenge, it is the greatest treasure. Every culture, every dialect, every melody adds its note to the grand song called India. Let's carry forward the vision of Sardar Patel to stay united, to celebrate our differences, and to stand together as one strong, shining nation. Prasar Bharati, in collaboration with the Culture Ministry, will hold the 67th edition of Akashvani Sangeet Sammelan from the 2nd of November to 29th of November across 24 centres nationwide. Information and Broadcasting Ministry said in a statement that since its inception in 1954, the Akashvani Sangeet Sammelan has stood as one of India's most enduring and respected cultural traditions. It was conceived to bring the finest streams of Hindustani, Carnatic and light and folk music to audiences across the country. And the Sammelan has played a vital role in preserving, promoting and popularizing India's rich musical heritage.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The Meher Baba competition, the flagship program of the Indian Air Force, became a key platform to showcase the capabilities of Indian industries and startups. The event highlighted the potential to support the Air Force with cutting-edge drone technology, particularly long-range heavy payload cargo drones. And this competition emphasized India's growing role in advancing drone technology, with a clear focus on meeting the operational needs of the Air Force. We have more on this from a correspondent, Smithy M. Paluruthi.
The Meher Baba competition has once again showcased the innovation and strength of Indian industries and startups in supporting the armed forces with cutting-edge technologies. The latest edition of Meher Baba competition was held in Thiruvananthapuram with an aim of accelerating innovation in drone applications for the Indian Air Force. The event also served as a bridge between educational institutions, industry, and the Air Force. This year's theme, Over the Sea Cargo Drones, focuses on developing and testing large-size cargo drones, particularly to enhance connectivity and logistics for the Lakshadweep Islands. Organized by the Southern Air Command in collaboration with Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, the program provided a valuable platform for interaction. One-on-one meetings with operational commanders and senior Air Force officers offered the participants vital insights into operational needs and future collaboration opportunities. The event has generated great excitement among participants who see it as a major opportunity to contribute to India's defense ecosystem. Let's listen to Lieutenant Commander Arun Shobalan, CEO of a startup firm from Kerala, who is actively participating in this exhibition.
Hi, I'm Lieutenant Commander Arun Shobalan. I'm the Chief Operating Officer of a drone manufacturing startup based in Kochi. We have a R&D center at Kochi, manufacturing unit at Palakkad, and customer support, software support division at Calicut. Now, we have three types of drone. One is Peregrine, which can be used for surveillance purpose. It has a flying time of 45 to 50 minutes. We have supplied 30 drones to Indian Army last week. Now we have another drones which can carry a 5 kg payload. It's called F-400. It can be used in various segments like disaster management, landslide issues, fire, police, all those things can be deployed. There is one more drone called AXL-30, which can be used for customized payload like thermal camera, infrared camera. These three are the, we have three drones.
Let us wait for more and more innovation from the Indian startups and industries in the field of drone. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और अब अयोध्या के रुख करते हैं. अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के दूसरे चरण देवोत्तनी एकादशी पर भारी संख्या में रामनगरी में पंचकोसी परिधि के परिक्रमा मार्ग पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी. धर्मनगरी अयोध्या के चारों ओर मानव श्रृंखला बनती जा रही है. धार्मिक उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं. आज सुबह शुरू हुई परिक्रमा में लाखों की संख्या में वृद्धजन, बच्चे व महिलाएं नंगे पांव अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा कर रहे हैं. और विवरण हमारे अयोध्या संवाददाता से.
आज प्रबोधिनी एकादशी तिथि लगते ही श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी सरयू में स्नान किया और परिक्रमा मार्ग पर स्थित विभिन्न धार्मिक और पवित्र स्थलों से लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा उठाई तो आस्था का समुद्र परिक्रमा पथ पर जगह जगह हिलोरे लेने लगा. कुछ ही देर में मानव श्रृंखला में परिवर्तित हुई परिक्रमा में साधु संत ढोल मंजीरों के साथ कीर्तन करते चल रहे हैं तो ग्रामीण महिलाएं अवधि पद गान से धार्मिक वातावरण सृजित कर रही हैं और वयोवृद्ध की परिक्रमा आस्था और श्रद्धा की पराकाष्ठा को परिभाषित कर रही हैं. परिधीय परिक्रमा की कतार देख ऐसा लग रहा है जैसे श्रद्धालु माला का रूप धारण करके तीर्थ स्थल अयोध्या की उपासना कर रहे हों. साथ ही भीड़ में शामिल विदेशों से आए भारतीय अप्रवासी परिक्रमा के विश्व व्यापकता को प्रमाणित कर रहे हैं. मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है. मान्यता है कि पंचकोशी परिक्रमा से इन पांचों पदार्थों का शोधन होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्व पर ही देवताओं ने वेदों की रक्षा के लिए स्तुति वंदना करके भगवान विष्णु को शयन से जगाकर उन्हें कर्तव्य बोध कराया था कि शंखासुर ने वेदों का हरण कर लिया है. इस पर विष्णु जी ने शंखासुर का वध कर वेदों की रक्षा की थी. तभी से यह तिथि हरि प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी के रूप में प्रचलित हुई. इसीलिए देवोत्थानी एकादशी के दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने की भी परंपरा है. रामनगरी की मान्यता के अनुसार यहाँ प्रत्येक एकादशी पर संत महंत और साधक पंचकोशी परिक्रमा परंपरागत ढंग से करते हैं. इस परिक्रमा में शामिल ना हो पाने वाले श्रद्धालु और संत रामकोट क्षेत्र या फिर अपने ईष्ट के मंदिर में 108 परिक्रमा कर पुण्यार्जन अर्जित करते हैं. इसी कड़ी में काले राम मंदिर में स्थापित करोड़ों राम नाम की परिक्रमा की भी परंपरा है. कहा जाता है यानी कानी चापापानी जन्मांतर कीर्तानी चा तानी सर्वाणी नश्यंतु पदक्षिणा पदे पदे. अर्थात परिक्रमा में पग पग पर जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है. इन्हीं मान्यताओं से ओतप्रोत हो लाखों श्रद्धालु अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं. परिक्रमा के लिए अयोध्या से तन्मय सोनी.
Across the world, birds have long been symbols of freedom, and in many ways they are also indicators of a planet's health. From forests to farmlands, these winged travelers remind us of the deep bond between people and nature. And in Nagaland, that connection is taking flight once again through a citizen-led initiative that is uniting communities for conservation. We have a report from a Kohima correspondent.
The Tokui Mong Bird Count was initiated by the Forest Division of Wakha District in 2022 and is held each year during the Lotha Naga Post-Harvest Festival of Tokui Mong. This year's count will take place from November 4th to 7th. The timing coincides with the peak migration period of the Amur Falcons, one of the world's most remarkable conservation success stories. It also welcomes the arrival of many winter visitors, giving birdwatchers across Nagaland an opportunity to record the state's incredible bird diversity over four exciting days. During the count, participants will use the eBird mobile app to record their sightings, generating valuable data on species diversity, migration trends, and even effects of climate change. Since its launch, the initiative has grown steadily, documenting 178 species in 2022, 219 in 2023, and 181 in 2024. Last year, more than 400 checklists were submitted by 73 eBirders from across the state. Beyond research, the event aims to nurture a love for nature among students and young people, promoting bird watching as both a hobby and a shared responsibility. Supported by the Nagaland Forest Department in collaboration with Bird Count India and partners like Foundation for Ecological Security, Nagaland Forest Management Project, and Forest and Biodiversity Management in the Himalayas, the Tokui Mong Bird Count truly reflects community-driven conservation in action. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा जर्मनी के सारब्रुकेन में हाइलो ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इस टूर्नामेंट में उन्नति अंतिम चार में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज के क्वार्टर फाइनल मैच हारने के साथ ही पुरुष सिंगल्स ही में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। और अब बात करते हैं आजादी के सफर की।
1st November 1913, the Gadar Party started the weekly revolutionary publication Hindustan Gadar from the Yugantar Ashram in San Francisco, the United States of America. The purpose of the publication was to further the Indian independence movement with special focus on Indian sepoys of the British Indian Army. The weekly was first published in Urdu, followed by a Punjabi edition on 9th November.
Later, the paper was also published in Gujarati, Hindi, Pashto, Bengali, English, German, French, and other languages. The issues were first handwritten before being printed using a small hand press. With the British government maintaining an iron grip on the press in India, the weekly emerged as an important publication to counter British propaganda.
The articles in Hindustan Gadar were initially authored by famous revolutionary Hardayal, with the printing operation run by another freedom fighter, Kartar Singh Sarabha, then a student of the University of California at Berkeley.
Copies of the paper were shipped to India with returning Gadarites and immigrants and were quickly deemed to be seditious and banned by the British Indian government. Careful measures were taken to shield the Gadar supporters from the British intelligence, which included the measure of memorizing over 1,000 names of subscribers so that no incriminating evidence could fall into the hands of the British government.
In March 1914, when the US government arrested Hardayal, he fled to Germany, leaving the operations to other members, including Ramchandra, Bhagwan Singh and Maulvi Barkatullah. They continued to spread information related to Indian independence and informed readers about the harshness of the British rule in India.
और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्व की जो आज के दिन हमसे बिछड़े या फिर आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ। इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे पुण्यतिथि की। आज पुण्यतिथि है स्वतंत्रता संग्राम के उस अटूट ज्वाला के धनी के ए दामोदर मेनन का, जिन्होंने अपनी लेखनी और सक्रियता से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। भारतीय स्वतंत्रता और एकीकृत केरल के लिए उनके योगदान सदैव अमर रहेंगे।
Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay passed on this day in 1950. He was an Indian novelist and short story writer in the Bengali language. His best-known works are the autobiographical novel Pother Pachali, Song of the Little Road, Aparajito, Undefeated, Chader Pahar, Mountain of the Moon, and Aranayak of the Forest. His first novel, Pother Pachali, was published initially as a serial, then as a book in 1929. Pother Pachali brought Bandyopadhyay to prominence in Bengali literature, and the novel and its sequel, Aparajito, were subsequently translated into numerous languages. Additionally, these two were made into films by Satyajit Ray, and together with Opur Sangsar, formed the highly successful Opur Trilogy.
आज हम याद कर रहे हैं ऐसी शख्सियत को जो सिल्वर स्क्रीन पर चमकती वे नन्ही परी थी जो बचपन से ही दर्शकों के दिलों पर राज कर गई। हम बात कर रहे हैं पद्मनी कोल्हापुरे की। बॉलीवुड की 1980 के दशक की के चमकती सितारे रही जिनकी मुस्कान और अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।
That we are listening to a song from the film South End, and Kolhapure began a career as a child artist and rose to prominence in the late 1970s and early 1980s, earning accolades like 3 Filmfare Awards and also Vaishnavi. Anthony Kiddish was born on this day in 1962. He is an American musician and lead vocalist of the rock band Red Hot Chili Peppers. Kiddish and his fellow band members were inducted into Rock and Roll Hall of Fame in 2012. Let's listen in to his hit track, By the Way.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
आज हम याद कर रहे हैं दीनानाथ भार्गव को, भारतीय कला की वे चमकती किरण जो संविधान के पन्नों पर राष्ट्रीय प्रतीक उकेरती रही। दीनानाथ भार्गव एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने शांति निकेतन के गुरु नंदलाल बोस की शिष्य परंपरा को समृद्ध किया। दीनानाथ ने अशोक स्तंभ के सिंह राजधानी को स्केच कर राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन तैयार किया जो 4 सिंह और सत्यमेव जयते के मंत्र से सजा था।
Yes, and Lyle Pierce Lovett was born on this day in 1957. He's an American country singer, songwriter and actor. Active since 1980, has recorded 14 albums and released 25 singles to date, including his highest entry, the number 10 chart hit on the US Billboard Hot Country Songs chart, Cowboy Man. And he has, of course, won 4 Grammy Awards, including Best Male Country Vocal Performance and Best Country Album. Let's listen in to the hit track, Cowboy Man.
Twinkle then right. She smiled at me, and as I wondered where, she said, I'm looking for a cowboy.
और आज जन्मदिन है मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का। सिल्वर स्क्रीन की वे जादुई मुस्कान जो दुनिया भर में भारतीय सौंदर्य का प्रतीक बनी, ऐश्वर्या राय एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर तय कर बॉलीवुड को वैश्विक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनकर सुर्खियों में आई ऐश्वर्या ने तमिल फिल्म इरवर से अभिनय की शुरुआत की और हिंदी में और प्यार हो गया से कदम रखा। आइए सुनते हैं उनके सिनेमाई सफर का ये खूबसूरत गीत।
And in 2004, Time magazine named her one of the 100 most influential people in the world. And in 2009, the government of India honored her with the Padma Shri. And in 2012, the government of France awarded her with the Order of Arts and Letters. And from the late 1990s, she had often been called the most beautiful woman in the world. Let's listen in to yet another song from one of her movies.
Sore likha bar so mita hai kosa hai barsha
इसी खूबसूरत गीत के साथ श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।